अच्छा, इस सूरत में आज के सबक में काफी चीजें आपको लिखने वाली होंगी आज के सबक में, आगे फिर हम देखेंगे क्या। तो आप लोग अपनी जरा यानी ऐसी चीजें जो आपको याद रखनी होंगी और उसके लिए लिखना जरूरी है। आयतें आसान आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल अल्फाज नहीं है। क्या आपको पता है मक्की सूरतें हमेशा आसान आसान अल्फाज के साथ होती है, तो इसलिए वो तो नहीं इतना मसला कि आपको समझना मुश्किल हो जाए, लेकिन कई चीजें जो आपको एक से ज्यादा माने होंगे तो आपको उसके लिए थोड़ा लिखना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरत हूद आयत नंबर 1-24। अलिफ लाम रा, किताबुन किताब है, कौन सी किताब, ये कुरान करीम। किसका तारुफ आ रहा है, और अक्सर आप देखेंगे हरूफ मुकत्तआत के बाद किताब की तारुफ से बात शुरू होती है, जैसे सूरह बकरा में अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, है ना। तो इसी तरह किताब, ये किताब है, वो कीमत हकम से एहकाम भी इसी से है, मजबूत करना, पक्का करना, पर ऐसा पक्का करना कि उसमें कोई कमी ना रहे, मोहकम, इसी से लफ्ज बनता है ना मोहकम। तो ये मोहकम है यानी पक्की है, इसके ना अल्फाज में ना माने में कोई गलती नहीं है, मजबूत है। अल्लाह ताला ने इन आयात को ऐसा बनाया है कि कोई इनके अंदर कोई खलल नहीं है, कोई फ्लॉ नहीं है, ठीक है। और मुहकम का माना कैंसलेशन का भी है, मनसूख होने का भी माना है, यानी जिस तरह पिछली किताबें तो मनसूख होती गई, यानी अब तो नहीं वो उनके अहकाम आते है ना, तौरात है, इंजील है, वो कुरान के आने के बाद वो कैंसल्ड है, समझ लें जैसे हम लफ्ज बोलते हैं एक्सपायर्ड है। तो अब ये किताब ऐसी एक्सपायर नहीं होनी, ये कैंसल नहीं होनी, इसके बाद क्योंकि नबूवत नहीं है, नबूवत खत्म हो गई, इसलिए ये किताब कयामत तक अब इसकी आयतें मुहकम रहेंगी, ठीक है। और मुहकम कॉम्प्रिहेंसिव के मानों में भी आता है, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, यानी कैसी है कि जो अपने अल्फाज में भी मुकम्मल, माने में भी मुकम्मल। देखा है आपने कभी कोई लोग कोई कलाम बोलते हैं तो अगर वो बहुत ज्यादा जोर उसकी अल्फाज पे देते हैं, अल्फाज ब्यूटीफुल, उसकी फॉर्मेशन ब्यूटीफुल होती है, तो आपने देखा होगा उसके माने कुछ भी नहीं रहते, मानों में कहीं ना कहीं खलल आ जाता है, मानों में जाहिर है वो जैसे कुरान करीम में है कि हर आयत जो ऑब्जेक्टिव बयान कर रही है, इतने जबरदस्त अल्फाज भी हैं, इतनी जबरदस्त सेंटेंस की फॉर्मेशन भी है, कंस्ट्रक्शन भी है, और माने भी पूरी तरह फुलफिल हो रहे हैं, तो मानों में भी मजबूत है, अल्फाज में भी मजबूत है, कोई ऐब नहीं निकाल सकता इसमें, कोई गलती नहीं निकाल सकता इसमें। कहीं ऐसा नहीं कि अल्फाज देखेंगे तो माने ही समझ नहीं आ रही कि माने ही गुम हो गए, अल्फाज ही अल्फाज, बस ब्यूटीफुल पोएट्री में क्या हो जाता है, अल्फाज ही अल्फाज है, लोग वाह वाह करते हैं, और क्या कोई हिदायत दे रहे हैं वो, नहीं कुछ भी नहीं, कोई मकसद, कोई कुछ, इधर की उधर मिला दी, उधर की इधर मिला दी, तो कोई नक्स नहीं है, कोई खलल नहीं है, ये मजबूत, जैसे मजबूत इमारत होती है ना, इस तरह मजबूत है। तो समझ आ गई बात, मोहकम का क्या है, यानी मजबूत और पुख्ता, जिसमें कोई खलल नहीं, इसी तरह मनसूख भी नहीं है। और इस तरह भी मजबूत है कि आयतों में कोई तजाद नहीं है, यानी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कि यहाँ पे कुछ कहा, कहीं और कुछ और कह दिया, फिर और आगे गए तो कुछ और बोल दिया, ऐसे नहीं है। और मजबूत इस तरह से भी है कि इसके जैसा कलाम कोई नहीं ला सकता, इतना मजबूत कलाम है। फिर सुम्मा फुस्सिलत, फिर तफसीर भी बयान की गई है इस इन आयतों को। पहले तो कॉम्प्रिहेंसिव जो होती है वो कम वर्ड्स में होती है ना बात, जैसे हम कहते हैं कि मसनून दुआएं बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, कम वर्ड्स में इतना बड़ा माना बता दिया जाता है, लेकिन कुरान की आयतें मुहकम भी है, कॉम्प्रिहेंसिव भी है, फिर उसके बाद दूसरी जगह पे जाकर उनकी तफसीर भी बयान की गई है। फॉर एग्जाम्पल सूरह इखलास है, 1/3 कुरान के बराबर, कहते ना तीन दफा पढ़े पूरे कुरान के बराबर सवाब मिल रहा था, क्यों? इसलिए कि सूरह इखलास में पूरे की पूरा तौहीद का जो जिसको कहेंगे लुबे लुबाब, तौहीद क्या चीज है, तो सब कुछ उसके अंदर है, लेकिन उसकी तफसील क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, वो बाकी जगह कुरान करीम में 1/3 ऑफ कुरान तौहीद पे है। तो इसमें मुहकम भी है आयतें और फिर तफसील भी है उनकी दूसरी जगह पे, ठीक है। तो मिल्लतुन तरफ से किसके, हकीम खबीर, उस हस्ती के जो हिकमत वाली और बाखबर है, क्योंकि ये काम, ये ऐसा कलाम कोई और नहीं पेश कर सकता कि इतने कम अल्फाज में बेहतरीन माने के साथ और बेहतरीन अल्फाज के साथ और तफसीली माने में बयान कर दिए जाएं, कोई भी नहीं कर सकता। ये वही कर सकता है जो हिकमत वाली हस्ती हो और जो बाखबर, जिसे क्यामत तक के लिए इसके अहकामात है, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये वो दौर भी आएगा, जो जमाना भी आएगा, उसमें एप्लीकेबल है इसके, इसकी आयतें, इसके अहकामात। और अल्लाह ताबुदू इल्लाह, कि ना तुम इबादत करो मगर अल्लाह की। और इस किताब का मैसेज क्या है, कि तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, ये इसका मैसेज है। इसकी आयतें जो मुस्तकम है ना, फिर आयतों की तफसील कर दी गई, ताकि किस लिए, ताकि तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। तो इस किताब को नाजिल करने का जो असल मकसद है ना, वो यही है कि बंदे अल्लाह की इबादत करें। अब अगर सारा देख लें तो इसी चीज के ऊपर ये एक जगह पे सेंटर में आके क्या चीज बनती है, कि अल्लाह की इबादत होनी चाहिए। इन्नानी लकुम मिन्हु नज़ीरुन व बशीर, बेशक मैं तुम्हारे लिए इसकी तरफ से खबरदार करने वाला भी हूँ और बशारत देने वाला भी। अब नज़ीर का जो माना है ना, एक तो ये इसका पैगाम है कि एक अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया क्या कि वो सारे जहान के लोगों से कह दें कि मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए नजीर और बशीर हूँ। नजीर, अब नजीर हमने यहाँ पर तर्जुमा किया डराने वाला, तो क्या किसी दरिंदे को नजीर कह सकते हैं कि हाय शेर नजीर है क्योंकि वो डराने वाला है, या कोई दुश्मन को नजीर कह सकते हैं? नहीं, नहीं कह सकते। क्यों? वो भी तो उनसे तो डर लगता है। इसलिए कि नजीर उस शख्स के लिए बोला जाता है जो अपने किसी प्यारे को शफकत से, मोहब्बत से, ऐसी चीज से डराए और बचाए जो उसके लिए दुनिया में भी और आखरत में भी नुकसान पहुंचाने वाली है। लिख लें अपने पास, क्योंकि बार बार ये जब लफ्ज कुरान करीम में आएगा तो आपको पता होना चाहिए, खबरदार करने वाला, डराने वाला, इस तरह लिखा तो होता है, लेकिन हम आगे इसकी तफसील भी देखें कि कैसे, कैसा इंसान है नजीर। नहीं, ऐसे हर एक डराने वाली चीज के लिए नहीं कर सकते कि वो नजीर है, फलां नजीर है ना। नजीर सिर्फ वो है जो बहुत प्यार से, बड़ी मोहब्बत से, खैर ख्वाही हो उसके अंदर, फिर वो ऐसी चीज से डराए जो आपके लिए वाकई नुकसान दे। कहां पे नुकसान दे होगी? दुनिया में भी और आखरत में भी, ठीक है। और अल्लाह ताला का पैगाम है फिर कि सबको क्या क्या कह दो, उस हकीम और खबीर हस्ती ने तमाम इंसानियत को ये पैगाम दिया है कि अनिस्तगफिरू रब्बकुम, कि तुम बख्शिश मांग लो अपने रब से, अपने रब से बख्शिश मांगो, तुम फिर तूबू इलैही, तौबा करो उसकी तरफ। तो हम तो इस्तगफारा तौबा एक ही माना समझते हैं, यहाँ पे तौबा अलग है और इस्तगफार अलग है, तो ये ऐसा क्यों है? असल में इस्तगफार जो होता है ना, मगफिरत, वो पिछले गुनाहों से होती है, और तौबा आइंदा, आइंदा हमने उस ऐसी इस चीज को नहीं करना, ये फर्क है। यानी तौबा इस्तगफार क्या है कि जिसमें जैसे हम शर्मिंदा होते हैं, हम उसके बाद कहते हैं कि अल्लाह हमसे ये गलती हो गई, इतराफ करते हैं, निदामत होती है, ये इस्तगफार है। और फिर जो पलट आते हैं ना आप अल्लाह की तरफ कि मैंने अब उस तरफ दोबारा नहीं जाना जिस डायरेक्शन में मैं जा रही थी, वो तौबा है। इस्तगफार पहले होती है, फिर तौबा है, यानी पिछले गुनाह के पहले आप निदामत होती है, आप माफी मांगते हैं, और आइंदा ना करने का जो आप इरादा करते हैं वो तौबा हो जाती है। तौबा आइंदा के लिए, कि मैंने इन चीजों के पास अब नहीं जाना। इसी वजह से तो उलमा कहते ना कि अगर कोई आइंदा के लिए गुनाह करने से बचने का इरादा ही करता, बस जुबान से कहता जाता अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, तो ये अस्तग़फार करना क्या है? तौबतुल काज़िबीन है, झूठों की तौबा है। यानी इसलिए क्योंकि आगे से इसके कभी कुछ गुनाह से रुकने का इरादा ही नहीं है, तो ऐसी तौबा तो खुद काबिले तौबा है, ऐसी तौबा के ऊपर तो तौबा करनी चाहिए। तो तौबा वही है जिसमें इंसान आइंदा इस गुनाह से बचने के लिए, आइंदा ये ना गुनाह करने के लिए अजम कर ले। तो पैगंबर किस लिए आया, नजीर और बशीर बनके उनको किस लिए भेजा गया, कि तुम कि पैगंबर आके लोगों को बताए कि अपने रब से बख्शिश मांग लो। तो दुनिया के तमाम पैगंबरों का काम यही था, लोगों को अल्लाह की तरफ ले आना, अल्लाह की इबादत की तरफ ले आना, जो तुम पहले से कर रहे इससे तौबा कर लो, इससे बख्शीश मांग लो। और फिर युमत्तेकुम मतान हसन, जब तुम तौबा कर लोगे ना, जब तुम पलट आओगे अल्लाह की तरफ, जब तुम उस रास्ते को छोड़ दोगे, ढीठ नहीं होना तुमने, तुम उसी रास्ते पे नहीं चलते जाना, पलट आओगे तो क्या होगा, अल्लाह ताला उसका फायदा बता रहे हैं कि क्या मिलेगा आपको। हम सोचते हैं क्या इससे क्या फायदा होगा, हर चीज में फायदा देखते हैं ना। तो युमत्तेकुम मताअन हसनन, वो फायदा देगा तुमको फायदा अच्छा, बड़ा अच्छा फायदा तुमको देगा। यानी जो सच्चे दिल से इस्तग़फार कर लेंगे, आइंदा ये सोच लेंगे मैंने आइंदा ये गुनाह नहीं करना, तो अल्लाह ताला उनकी गुनाह तो बख्शेगा, वो तो ठीक है एक बात है, मगर सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि उनको अच्छा फायदा भी देगा दुनिया में। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया लनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, यानी हम इनको जरूर पाकीजा जिंदगी देंगे, दुनिया में भी इनको अच्छा सिला मिलेगा। सूरह नूह में इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो जब हम पढ़ेंगे उसमें यह है कि इस्तग़फार करने वालों के मुतल्लिक बताया गया कि अगर तुमने अल्लाह ताला से इस्तग़फार मांगी ना, तो नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कह रहे हैं तो अल्लाह ताला तुम पे आसमान से बारिश बरसाएगा, तुमको माल और औलाद अता करेगा, फिर तुम्हारे लिए बाग और नहरें अता करेगा, तुम्हें वो देगा तुम्हें, तो इतना कुछ यानी इस दुनिया की जिंदगी को भी तुम्हारे लिए अच्छा कर देगा। तौबा करने के बड़े फायदे हैं, तौबा सिर्फ आखिरत में ही फायदा देगी, दुनिया में भी फायदा देती है, लेकिन कब तक, इला अजल मुसम्मन, एक मुकर्रर वक्त तक। दुनिया की नेमतें देगा लेकिन ये नहीं होगा कि हमेशा आप दुनिया में ही रहो और इसी के अंदर मजे करते रहो, नहीं, एक मुकर्रर वक्त तक, यानी जितनी इंसान की जिंदगी है जब तक मौत नहीं आती, खास मियाद कौन सी है, मौत, मौत तक ये सारी चीजें अच्छी देता रहेगा, आखिर मौत पे तो सारी चीजों का खात्मा हो ही जाना है ना। तो अब हम सोचते हैं क्या फायदे होंगे, तो हमारे जहन में शायद आता हो कि बहुत सारे में पैसे मिल जाएंगे, ये आता है शायद, हालांकि मताए हसन जो है ना क्या चीज है, बाज बुजुर्गों ने फरमाया कि उस इंसान में कनात आ जाएगी, कंटेंटमेंट, जो उसके हाथ से चला जाए उस पर गम नहीं रहेगा, दुनिया जितनी भी उसको मिली होगी ना उस पर मुतमईन हो जाएगा। अब जब इंसान को दिल ऐसे मुतमईन हो जाए, कनात उसके अंदर हो, जो नहीं मिला उस पर गम भी ना हो, तो उसकी जिंदगी कितनी आसान हो जाए, ऐसा ही है ना। तो याद रखें तौबा जो है करने में इसी वजह से देर नहीं करनी चाहिए कि आप सिर्फ तौबा को, जैसे बाज लोग कहते हैं अब हज पे जाएंगे तो फिर मैं तौबा कर लूंगी एक ही दफा, वो ये समझते हैं कि शायद तौबा सिर्फ आखिरत के लिए है उसका फायदा, हालांकि तौबा का फायदा दुनिया में भी है। अल्लाह ताला ऐसा दिल दे देगा जो पुरसकून दिल होगा, ये चीज कहीं से भी नहीं मिलती, किसी पैसों से कनात नहीं मिल सकती। आप देखेंगे लोग इतने मालदार होते हैं, तनात नहीं है तो हर वक्त उनके अंदर हविस, हर वक्त बेचैनी, हर वक्त और की चाहत, ये उनको सोने भी नहीं देती, ये उनको बेचैन रखती है। तो जो इंसान दुनिया में जिसको मताए हसन मिल जाए, अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा फायदा मिल जाए, तो उसके लिए तो ये दुनिया ही जन्नत बन जाती है, वो गम और परेशानी से दूर है। तो इसलिए इसको डिले नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप कभी मसलन कहीं जा रहे हो और आप रास्ता गुम कर देते हैं, किसी और रास्ते पे निकल जाते हैं, तो आपको जब पता चलता है कि मैं गलत रास्ते पे आ गई हूँ, तो क्या आप ये सोचते हैं नहीं अभी मैं चलती रहूंगी, जब शाम हो जाएगी ना फिर पलटूंगी, ऐसा सोचते नहीं। फौरन आपका फिक्र पड़ जाती, हाय हम गलत आ गए, फौरन चाहते हैं कि वापस जाएं उसी रोड पे जिसने हमारी मंजिल तक हमें लेके जाना है। तो जिंदगी में इंतजार क्यों करते हैं कि जिंदगी की शाम हो जाए फिर मैं पलटूंगी, ये क्यों होता है? इंसान इसमें भी तो ये सोचे कि मैं जल्दी से जल्दी वापस सीधे रास्ते पे चली जाऊं। तो अल्लाह ताला ने मौत तक सिर्फ ये दरवाजा खुला रखा है तौबा का, फिर ये हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और कयामत के दिन इंसान रो रो के भी माफी मांगेगा तो माफी नहीं है, ये तो अल्लाह ताला का फजल है कि उसने दुनिया में माफी का दरवाजा, तौबा का दरवाजा जो बहुत बड़ा है वो खुला रखा है, और उसके फायदे दुनिया में भी दे दिए। और ना देखिए, एक इंसान ने गलत किया, अल्लाह ताला ने माफ कर दिया, यही बहुत बड़ी बात है। और अल्लाह ताला कितना मेहरबान है कि वो कहता है मैं माफ भी करूंगा, मैं तुम्हें अभी दुनिया भी अच्छी कर दूंगा, तब तक मौत तक। और इसमें ये भी है कि इंसान अल्लाह के अजाब से भी बचा रहता है इस्तगफार करने से ना, तो ये भी एक मताए हसन है कि जो अजाब आते हैं, कौन सी चीज है जो पता है अजाब को यानी रोके रखती है? एक इस्तगफार और एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में होना था। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चले गए दुनिया से, तो अब कौन सी चीज अजाब को टालेगी? दो में से बस एक रह गई है और वो है इस्तगफार। एक दफा हजरत हसन बसरी बैठे हुए थे, एक आदमी आया तो उसने शिकायत की कि मेरे खेत सूखे हैं, फरमाया इस्तगफार करो। दूसरा है, उसने कहा मेरी औलाद है और उस वो औलाद नहीं है, उसकी वजह से मैं बड़ा मुश्किल में हूँ, उसको भी उन्होंने कहा कि तुम इस्तगफार करो। एक आया, उसने रिस्क की तंगी की शिकायत की, फरमाया कि इस्तगफार करो। तो एक आदमी बैठा हुआ था, उसने कहा कि मैं देख रहा हूँ अब हर एक को यही कहते जा रहा है इस्तगफार करो इस्तगफार करो, फरमाया क्यों नहीं, कुरान पढ़ो और उन आयात को देखो कि इस्तगफार के कितने फायदे बताए गए। तो यहाँ पे आप देखें, दुनिया के फायदे भी, अगर आपको दुनिया को कोई फायदा चाहिए ना, इस्तगफार करना शुरू कर दें, अपनी गलतियों का इकरार करें। मैं अब वो वाली इस्तगफार नहीं करी, आप बस तस्बीहां इतनी दफा पढ़ लें, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, सवा लाख दफा पढ़ लें तो आपको मुश्किल आसान हो जाएगी। ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, ये भी क्या है? ये भी तो तौबा ही है, ये भी तो इस्तगफार ही है कि अल्लाह हमने जुल्म किया। इसमें भी तो निदामत, शर्मिंदगी, एतराफ़ जुर्म ये है। तो ये हमने आज ये कल्चर बना लिया कि बस बैठो और इसके दाने फेंकते जाओ और ये बस हमारी इस्तगफार हो रही है। ये ट्रू है कि इस्तगफार से दुनिया का फायदा होगा, आपकी मुश्किलें आसान होंगी, आपके जो जो मसले हैं वो आसान होंगे। देखिए, उसने खेत सूखने की शिकायत की, किसी ने औलाद की शिकायत की, किसी ने रिज़्क की शिकायत की, सबके मसलों का हल इस्तगफार था। यानी ये दुनिया का फायदा देती है। और ये क्या चीज है कि मैं मान जाऊं कि मैंने गलती की है, ये नहीं अल्लाह जाने हमसे क्या गलती ऐसी हो गई कि अल्लाह ने हमारे साथ ऐसे किया, इसका मतलब आप समझते हैं कि मेरे से तो कोई गलती हुई नहीं। जब हम ये कहते हैं ना, पता नहीं हमसे ऐसा क्या गुनाह हो गया कि जो हमें इतनी बड़ी सजा मिल गई इसकी, ये अक्सर हमारे मुंह से निकलता है। इसका मतलब हमारे अंदर एरोगेंस है, तकब्बुर है, बढ़ाई है अपनी कि मैं तो इतनी पाक, तेरे से क्या गलती हो गई, अल्लाह तूने, नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, कि अल्लाह तूने मेरे साथ ज़्यादती की है, मैंने तो इतनी बड़ी कोई गलती नहीं की थी, तूने ऐसा कौन सा मेरा जुर्म देख लिया। नऊज़ुबिल्लाह, इतनी बड़ी बात कहना, इसका मतलब हम नहीं समझते कि हम जो है कोई गुनाह कर सकते हैं या हमने कोई बड़ी गलती की है, हम तो बड़े पाक हैं। ये इन अदर वर्ड्स में ये कह रही हूँ कि मैं बड़ी पाक हूँ, तो ये बात कभी मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। जब कोई मसला, इंसान फौरन कहे अल्लाह हमारी ही गलती है, अल्लाह मुझसे ही गलती हुई है, अस्तगफार है ही ये, अस्तगफार लोगों को बुला के और ये आयत करीमा का खत्म कराना नहीं है। आप क्या जरूरत महसूस करती है कि मुझसे को गलती हुई है और मैंने गुनाह किए और मैंने इनको धोना और उसके लिए मुझे अल्लाह के आगे झुकना और उसे माफिया मांगनी है? माफिया ऐसे मांगी जाती? आप किसी इंसान से भी माफी मांगते कैसे मांगते? ये नहीं पता कि अल्लाह के सामने माफी मांगनी तो कैसे मांगे? तो जब इंसान ऐसे अल्लाह के आगे झुक जाता है ना, तो ये चीज आपको खुश कर देती है कि मेरा बंदा कितना शर्मिंदा है, अल्लाह राजी होता है इससे। फिर तो जब रब राजी हो जाए तो सब कुछ मिल जाता है। इसलिए इस चीज को याद रखेंगे, तौबा क्या चीज है, इस्तग़फ़ार क्या चीज है। अब मुझे कुरान पढ़ने वाले हमें कम से कम पता होना चाहिए। हम ऐसे ऐसे तस्बीहां फेंकते ना जाए अस्तग़फ़िरुल्लाह के, दाने फेंकते जा रहे हैं, इनको पता ही नहीं क्या कर रहे हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, मैंने आज जो है ना 1,25,000 दफा अपना खत्म कर लिया। वयुती कुल्लज़ी फ़ज़लिन फ़ज़लहु, और वो देगा हर फजल वाले को फजल। इसका क्या माना है? यानी फजल से मतलब क्या कि इंसान का जो अमल है ना, नेक अमल, उसके बदले में वो उसको फजल देगा यानी जन्नत देगा। हर नेक अमल करने वाले को अल्लाह ताला अपना फजल अता फरमाएगा। और अल्लाह का फजल क्या है? जन्नत। फजल क्या चीज होती है? जायद चीज, एक्स्ट्रा, और देगा, एक्स्ट्रा देगा। तो जो नेकी करेगा उसको अल्लाह और देगा। कितनी सुभान अल्लाह, मेरे रब की उसका करम है और उसकी रहमत है। तो जो जितना अच्छा करता जाएगा उतना ही अच्छा पाता जाएगा। जितना ज्यादा करेगा, जितना आगे बढ़ के करेगा, एक्स्ट्रा उसको मिलता जाएगा, उतना ही अजर मिलता जाएगा। ये माना। और फिर ये भी है कि देखिए, एक नेकी करोगे उसके बदले में 10 गुना मिलेंगे। तो ये क्या है? अजर है, ये फजल है, एक्स्ट्रा है। लेकिन अब एक नेकी का तो एक ही होना चाहिए था बदला, लेकिन क्या उसको मिल गया? एक के बदले 10। अब अगर उसका गुनाह दुनिया में ही मिट जाता है, वो माफी मांग लेता है, गुनाह मिट गया, तो उसके 10 नेकियां तो पड़ी रही ना। और अगर बिलफर्ज एक गुनाह नहीं भी मिटता, तो आखिरत में जाके एक गुनाह किया था और एक नेकी की थी, आखिरत में वो एक नेकी 10 बन गई और गुनाह एक ही रहा। तो वो जो 10 में से एक ने एक बुराई को कैंसिल कर दिया, 9 फिर भी उसके पास बाकी रह गई। इसीलिए अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया कि उस शख्स की हलाकत हो जिसकी अकाइयां उसकी दहाइयों पर गालिब आ जाए, यानी सिंगल डिजिट्स डबल पे गालिब आ जाए। सिंगल है ना, ये गुना क्या है? सिंगल डिजिट्स है, एक गुना एक उसका लिखा जाएगा, और एक नेकी उसकी 10 लिखी जाएंगी, तो वो डबल डिजिट्स है। फिर भी अगर तुम्हारे सिंगल डिजिट्स डबल के ऊपर गालिब आ जाए, तो फिर तो उसके लिए हलाकत ही है ना। अल्लाह ताला ने तो डबल कर करके भी दिए, अपना फजल भी दिया, ज्यादा भी करके दिया, तो तुम फिर भी ना फायदा उठा सके। तो दुनिया में भी एक मुकर्रर वक्त तक फायदा पहुंचेगा, दुनिया में भी अल्लाह ताला अजाब नहीं नाजिल करेगा जैसे पिछली बस्तियों के ऊपर अजाब आए थे अगर तुम तौबा इस्तिगफार पक्की कर लेते हो। दुनिया में भी अल्लाह रिस्क देगा, दुनिया में भी अल्लाह कहत, खुशकसाली, इस तरह के अजाबों में नहीं डालेगा, दुनिया की मुसीबतों से निजात देगा और दुनिया के गम उससे निजात देगा, और आखरत में भी, और गुनाह का माफी तो हो ही गई, और आखरत में भी अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाएगा और एक एक के बदले 10-10 देगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। वा इन तवल्लौ, फिर भी अगर तुम मुंह फेरोगे, फिर भी तुम जाते हो, फइन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन कबीर, तो बेशक मैं डरता हूँ फिर तुम्हारे बारे में बड़े दिन के अजाब से। अल्लाह अकबर, जिस दिन को अल्लाह बड़ा कह दे वो कैसा बड़ा होगा, सोचे। जिसको अल्लाह बड़ा कह दे, दुनिया के किसी दिन को अल्लाह ताला ने बड़ा दिन नहीं कहा, यौमिन कबीर, भाई किसी ये हम जिसको कहते हैं ना हाय ये पहाड़ जैसी जिंदगी अब कैसे कटेगी, हाय ये दिन कैसे अब गुजरेगे, हाय ये रात कैसे कटेगी, ये तो इतनी लंबी हो गई या सदियों बराबर हो गई, उसको अल्लाह ने नहीं यौमिन कबीर कहा, क्यामत के दिन को अल्लाह ताला ने यौमिन कबीर कहा। तो अगर तुम तौबा नहीं करते, अगर तुम अल्लाह के फजल को तलाश करने के लिए और एक्स्ट्रा नहीं करते, नेकी का शौक नहीं रखते, तो उस बड़े दिन की सजा से मैं डरता हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि जो पलटा ही नहीं अल्लाह की तरफ तो अपना ही नुकसान करेगा ना। ठीक है, जो नहीं अल्लाह की तरफ आता किसी को और का नुकसान नहीं करा, हमने पहले भी पढ़ा था ना सूरह यूनुस में, किस अगर आप अच्छाई करते हैं अपने लिए करते हैं, अगर भलाई करोगे अपने लिए करोगे, अगर बुरा करोगे तो अपने लिए करोगे। तो मैं तुम्हारे लिए, मैं तो तुम्हें बुला रहा हूं, मगर अगर तुमने इनकार किया मुझे डर है तुम पे अजाब ना आ जाए, मुझे बहुत बड़े दिन के अजाब से डर लगता है तुम्हारे लिए। इल्लाह ही मर्जियाकुम, अल्लाह ही की तरफ तुम्हारा लौटना है। अब इसके अंदर एक धमकी भी है, धमकी इस तरह है कि अल्लाह के सिवा तुम्हारी कोई जायपना नहीं है, कहां भाग के जाओगे फिर। ठीक है, तुम अगर पलटते हो ना अल्लाह से, नहीं तौबा करते, नहीं अल्लाह की तरफ आते, तो जाओगे कहां, तुम कहीं भी भाग के चले जाओ, पलटना तुम्हें एक दिन उसी की तरफ। और इससे इसमें बड़ा यानी एक खौफ पैदा करने वाली चीज है ये कि इंसान ये सोच ले फिर कि मैं कितने भी गुनाह कर लूं, क्या भी कर लूं, कितनी भी एरोगेंस दिखा लूं, सरकशी दिखा लूं, नाफरमानी कर लूं, उसके बाद एंड क्या है। एंड यही है कि अल्लाह के पास जाना। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी वहुआ आला कुल्ली शहीन कदीर, और वो हर चीज पर कादिर है, वो बेबस नहीं है कि तुम उससे भाग के कहीं जा सको। अला खबरदार इन्नहुम यस्नून सुदूरहुम, बेशक वो लोग मोड़ते हैं अपने सीने, अपने सीनों को मोड़ते। इसकी बहुत सारी तफासीर आप किताबों में देख लेंगे, बहुत सारा लिखा हुआ है कि क्या इसका माना है सीने को मोड़ने का। ऐसा कब होता है कि जब कोई सीनों को मोड़ता है, जब कुछ छुपना होता है किसी से, है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों को दावत देते थे ना, तो कुछ तो सुनते थे और कुछ कहते थे कि बस आए हमें सुनाए भी ना, ना सुनने के लिए ना कि हमारे अल्लाह की किताब सुने भी ना, तो वो ऐसे सीने अपने मोड़ते थे, अपनी टर्न कर लेते थे अपने आप को। दादा ये बयान करते हैं कि वो अपना सीना इसलिए मोड़ते थे कि अल्लाह की किताब को ना सुन सके। तो मुनाफिकीन भी ऐसे करते थे बाद में, तो ये मुशरिकीन मक्का भी अपना सीना मोड़ लेते थे ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छुप सके। तो ये आयतें नाज़िल हुई थी, और बाद में ये भी कहा कि अपने दिलों में बोग्स अदावत, मुनाफिकीन इन बोग्स और अदावत को छुपाते थे और जाहिर ये करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत है। अल्लाह ताला कहते हैं जो भी अपने सीनों में छुपाओगे ताकि वो छुप सके आपसे, ताकि वो आपसे लगकर उनसे छुप सके, आपके सामने ना आए, आपके आपको फेस ना करना पड़े। तो एक बात याद रखो, अलाहीना यस्तगशूना थियाबहुम यालमु मा युसिरून व मा युअलिनून, खबरदार जान लो जिस वक्त वो ढांपते हैं अपने कपड़ों को, यानी अल्लाह की तरफ बुलाने वाले को फेस नहीं करना चाहते, इग्नोर करना चाहते, उससे मुंह मोड़ते हैं, ऐसे सीने मोड़ मोड़ के करते हैं, तो जब वो अपने कपड़ों से खुद को ढांपते हैं तो याद रखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो छुप सके लेकिन अल्लाह से तो कोई छुप नहीं सकता। वो तो जानता है जो छुपाते हैं और जो वो जाहिर करते हैं, जो दिल में नफरतें बोग्स ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बातें रखी हैं, अल्लाह उनको भी जानता है और जो जाहिर करते हैं उनको भी जानता है। इन्नहु अलीमुन बिज़ाति सुदूर, बेशक वो तो सीनों के अंदर की बातें जानता है। फ़हुस्सिला मा फ़ी सुदूर है ना वाला आदियात में, तो वो उस दिन क़यामत के दिन सीनों के अंदर छुपी हुई बातों को निकाल लाएगा, फिर क्या करोगे। इसी से फिर आगे रेलेवेंट बात कि अल्लाह ताला कितना जानता है, सुभान अल्लाह। फिर देखें 12वां पारा शुरू होता है, वमानिंदा बतिन फिल अर्थ, कोई जानदार इस जमीन पे ऐसा है ही नहीं। जब कह दिया गया ना कोई भी नहीं है जमीन पे, तो सब की नफी हो गई, कोई ऐसा नहीं है जमीन पे, इल्ला मगर अल्लाह ही रिस्क हुआ, एक्सेप्ट किए कि अल्लाह के जिम्मे है उसका रिस्क, उसको रिस्क पहुंचाना अल्लाह ने अपना जिम्मा ले लिया है, अल्लाह ने अपने ऊपर लाजिम किया है कि उसने हर एक को रिस्क देना है। अब आप ये सोचें जमीन के ऊपर क्या क्या है, हमें तो सच्ची बात है आज इंसान को ये नहीं पता है कि जमीन पे कौन कौन से जानदार हैं, सब के नाम नहीं जानते और सबको नहीं जानते, बेशुमार अजनास है, बेशुमार स्पीशीज है, बेशुमार। मिसाल के तौर पे एक अगर हम मिसाल लें, चींटियां, चींटी एक स्पीशी है, ठीक है। अब चींटियां कितनी, एक हमारे शहर की चींटियां होंगी, एक फिर हमारी स्टेट की, फिर हमारे पूरे मुल्क की, फिर उसके बाद आप देख ले पूरी दुनिया की चींटियां, जहां जहां, ये सिर्फ एक स्पीशी की बात हम कर रहे हैं, जहां जहां भी है अल्लाह उसको उसका रिस्क पहुंचा रहा है। अल्लाह ताला कहते हैं मेरे जिम्मे है हर एक को रिस्क देना, हालांकि वो इसका पाबंद नहीं है लेकिन उसने खुद ही अपने जिम्मे लिया। और रिस्क क्या चीज होती है, रिस्क सिर्फ खाना पीना नहीं है, हम सोच रहे होंगे शायद आपके चूंटी को जो खिलाता है वो अल्लाह, सिर्फ रिस्क वो नहीं है, यानी रिस्क हर एक वो चीज जो उस जानदार की सस्टेनेंस के लिए जरूरी है वो रिस्क है। जैसे खाना तो रिस्क है ही, पानी तो रिस्क है ही, उसके अलावा क्या है, हवा भी तो रिस्क है, तो खाना पीना आपको दे रहे हैं, हवा है नहीं, ऑक्सीजन है नहीं, तो आप सर्वाइव कर सकते हैं, वो भी तो रिस्क है, जो भी आपकी सस्टेनेंस के लिए। इसी तरह रोशनी, धूप, सन, ये भी रिस्क है, उसके बगैर भी नहीं जानदार रह सकते, खत्म हो जाएंगे जमीन के ऊपर, लाइफ खत्म हो जाएगी। तो जो चीज भी किसी भी जानदार के लिए जरूरी है सर्वाइवल के लिए, उसको रिस्क कहते हैं, उसमें हवा, पानी, खाना पीना हर चीज आ गई। तो सोचें कि अल्लाह ताला हर एक को, अब ये एक स्पीशी मैंने आपको बताया ना, चलो चींटियों की हमने बात की, चींटी एक स्पीशी है, अब हम कहते हैं पूरी दुनिया की चींटियां, अब ये कहना तो आसान है लेकिन जरा इसको सोचो, जिसको ये पता होगा कि फलां चींटी कहाँ रहती है, किधर, कोई एक चींटी तो हमारे घर में होगी, एक हमारे गार्डन में होगी, एक हमारी स्टेट में होगी, एक चींटी अफ्रीका में किसी जंगल के अंदर किसी दरख्त के नीचे कहीं पड़ी होगी, जिसको ये पता होगा कि कौन कहाँ है वो ही उसका इंतजाम भी कर सकता है। तो सुभान अल्लाह, इसका मतलब उसको पता है कि कौन कहाँ है, किस किस जगह मेरी मखलूक है, तभी तो वो उसका इंतजाम करेगा। नंबर टू, नहीं सिर्फ जगह का ही नहीं, नंबर टू जिसको ये पता होगा कि इतनी इंफॉर्मेशन होगी कि इसकी जरूरत क्या है, तभी उसको रिस्क दे सकेगा ना। मसलन अब शेर है, वो गोश्त खाता है, उसके आगे आप घास रख दे, रिस्क दे दिया हमने इसको, अभी वो तो उसकी गिजा ही नहीं है। तो जिसको ये मालूम हो कि किसकी क्या जरूरत है वो इसको रिस्क पहुंचा सकता है, इसका मतलब उसको ये भी मालूम है इसकी क्या जरूरियात है, कौन कहां कहां है, उसकी क्या जरूरियात है। हिरन को गोश्त नहीं खाना, उसको घास खानी है, उसका इंतजाम करना उसके जिम्मे और उसको वहां पहुंचाना जहां वो रहता है। अब एक कोई मखलूक कहते हैं वो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल में रहती हैं, हम वहां पे जाए गए भी नहीं, हमें पता है उतनी सर्दी में उतनी बर्फ के नीचे तहों के नीचे कई मछलियां हैं, उनको वहां पे वो रिस्क पहुंचा रहा है, तो वो रब हर एक की जरूरत उसको प्रोवाइड कर रहा है। तो उस जानदार की पूरी इंफॉर्मेशन उसके पास है, वो कहाँ है, वो क्या खाता है, उसको अपनी जिंदगी के लिए अपने सर्वाइवल के लिए किन चीजों की जरूरत है, सब कुछ पता है। अब वो पता है, एक रिवायत में आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम आग की तलाश में जब कोहे तूर पे गए तो वहां पे देखे नबुवत मिल गई उनको, अच्छा तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिरौन की तरफ चले जाए,
तो ख्याल आया कि हाय बीवी को तो मैंने वहां पे पीछे छोड़ा हुआ है, उसको उसकी कौन किफालत करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा ये सामने जो पत्थर पड़ा है ना, पत्थर की चट्टान सी थी, इसमें अपनी लकड़ी मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने लकड़ी मारी, वो चट्टान फट गई, उसके अंदर एक दूसरा पत्थर निकला। हुक्म हुआ इसको भी, इस पे भी लकड़ी मारो। उसपे भी लकड़ी मारी, वो जो अपना था मारा आसा को भी पत्थर फट गया। उसके अंदर एक तीसरा पत्थर था, उस पर भी फरमाया लकड़ी मारो, वो भी फट गया। अंदर सुभान अल्लाह एक कीड़ा था, उसके मुंह में हरा पत्ता था। अल्लाह ताला ने दिखाया कि देखो वो रब यहाँ पे भी जो इसको गिजा पहुंचा सकता है यहाँ पे, वो तुम्हें नहीं पहुंचाएगा, तुम्हारी बीवी को नहीं पहुंचा सकता। और बाज रिवायात में आता है, तफसीर कबीर में इमाम राजी ने इसको नकल किया कि मूसा अलैहिस्सलाम को फिर अल्लाह ताला ने उस कीड़े का कलाम सुनाया कि वो कह रहा है पाक है वो जो मुझे देखता है और मेरा कलाम सुनता है और मेरी जगह को जानता है और मुझे याद रखता है और मुझे नहीं भूलता। सुभान अल्लाह, मुझे नहीं भूलता कि मैं यहाँ पे भी हूँ, तो मुझे यहाँ पे भी रिस्क पहुंचा रहा है। और हम देखो कैसे नादान इंसान है कि हम अकल शऊर रखते हुए भी ये सोचते हैं भूखे ना मर जाए, हाय हमारे खाने का क्या बनेगा। अल्लाह अकबर। तो वो अल्लाह वहां तक रिस्क पहुंचाता है। इसी तरह तिर्मिज़ी ने ज़ैद बिन असलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया कि अशरियों की एक जमात थी जो अबू मूसा, अबू मालिक और अबू आमिर पर मुश्तमिल थी। जब उन्होंने हिजरत की और रसूल सल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो उनके साथ सफर में जो खाना था वो खत्म हो चुका हुआ था। तो उन्होंने रसूल सल्लम की खिदमत में खाने का सवाल करने के लिए एक आदमी को भेजा। तो ये तीन साहब थे, अशरी कबीले से थे, तो इन्होंने हिजरत की है, इनके पास खाना खत्म हो गया, इन्होंने एक आदमी भेजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो कि भाई खाने का पूछ के आए। जब वो आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे पहुंचा तो उन्होंने ये आयत पढ़ते हुए सुना, वो मा मिन दाबतिन फिल अर्दी इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, कोई जानदार इस जमीन पे ऐसा नहीं मगर अल्लाह के जिम्मे है उसका रिज्क। तो उस आदमी ने सोचा कि अल्लाह के जिम्मे अशरियों की बनिस्बत चौपायों को रिस्क देना ज्यादा आसान तो नहीं है, यानी ये थोड़ी है कि उनको ज्यादा आसान है और हमें नहीं दे सकता, ऐसा थोड़ी है, हमारा भी तो रिस्क उसके जिम्मे है। वो वापस चला गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इनसे नहीं मुलाकात की, और आप आके अपने साथियों से कहा कि तुम्हें खुशखबरी हो, तुम्हारे पास मदद आने वाली है। अब वो साथियों ने यही समझा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया था और खाना लेने के लिए भेजा था, तो उन्होंने कोई वादा कर दिया होगा। अच्छा जी, वो मुतमईन हो गए। इसी दौरान दो आदमी उनके पास बर्तनों में खाना लेके आ गए, इसमें गोश्त था, सालन था, रोटियां थी, उन्होंने पेट भर के खाया। फिर उस आदमी ने अपने बाद सहाबा से, अपने साथियों से कहा तुम ये खाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाओ क्योंकि हम पेट भर के खा चुके। जब ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आपने हमारे लिए जो खाना भेजा था ना, इतना अच्छा खाना था, इतना लजीज खाना था, हमने कभी खाया नहीं ऐसा खाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने तो तुम्हें कोई खाना नहीं भेजा। उन्होंने बताया कि उनके एक साथी को उन्होंने आपकी खिदमत में भेजा था, तो आपने वो आदमी भेजा था खाना देके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी से पूछा, उसने बता दिया कि मैंने क्या सुना था और अपने साथियों से क्या कहा था। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमको अल्लाह ने ये रिस्क दिया। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ताला यानी अगर इस आयत को सामने रखे ना, ये बहुत खूबसूरत आयत है, अल्लाह ताला तुम जहां कहीं पे भी हो वहां पे तुम्हें रिस्क पहुंचाएगा, ये उसका जिम्मा है। और तुम ये तो सोचो, तुम तो एक इंसान हो, वो तो कीड़े मकोड़ों और उन चीजों को भी रिस्क देता है जिनके नाम भी तुम्हें नहीं मालूम, जिनकी किस्में तुम्हें नहीं मालूम, जो ऐसे हशरात हैं, रोज रोज साइंस नई डिस्कवरीज करती है, फलाना हमने देख लिया, फलानी मछली देख ली, ये देखो कैसे हम तो उनको ये टीवी स्क्रीन पे ही देख के हैरान होते रहते हैं कि ऐसी भी कोई चीजें हैं। कोई रींगने वाला कीड़ा है, कोई उड़ने वाला है, कोई चलने वाला है, कोई तैरने वाला है जानदार। तो कितने दुनिया में जंगल हैं, कितने दुनिया में सहरा हैं, कितना जमीन के ऊपर पानी है, पानी पानी समंदर है, उनमें खाइयां हैं, उनके अंदर पता नहीं कहां कहां कौन सी मछलियां हैं। वो में तो ये भी नहीं है इनके चीजें क्या क्या है जमीन पे। रिस्क देना किसी को या करना तो दूर की बात, वो अल्लाह वहां तक उनको पहुंचाता है। और हम ये सोचते हैं کہ فلاں کمپنی مجھے رزق دے رہی ہے، فلاں انسان مجھے رزق دے رہا ہے، اور ان کو ہم ایسے خدا بنا لیتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو میرا کام ہے، میں دیتا ہوں. اور پھر صرف یہ نہیں، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، وہ جانتا ہے اس کا مستقر بھی، مستقر قرار کی جگہ، دنیا میں رہنے کی جگہ، جیسے کسی کا گھر ہے، کسی کا گھونسلہ ہے، کسی کا غار ہے جس میں وہ رہتا ہے، کسی کے جو زمین کے اندر وہ نہیں بنا لیتے سرنگیں ہیں اس کے اندر رہتے ہیں، کوئی بھی کوئی رہتا ہے نا اس کا ٹھکانہ اس کو پتا ہے، ظاہر ہے پتا ہے، تو تبھی اس کو رزق دے رہا ہے نا وہاں پہ. وہ مستودع ہا، اور اس کی سونپے جانے کی جگہ بھی جہاں پہ اس کو سپرد کیا جائے، جیسے قبر ہے یہاں پہ کسی کو رکھ دیا جاتا ہے، تو وہ بھی اس کو پتا ہے ہر ایک کا. اور اس کے بارے میں کئی تفسیریں ہیں، ہم سورہ انعام میں اس کی مستقر اور مستودع پڑھ چکے ہیں، ویسے اگر آپ کو یاد ہو تو. بعض نے کہا مستقر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ انسان یعنی پرماننٹ طور پہ رہے، اور مستودع جہاں پہ انسان ٹیمپرری کسی ضرورت کے لیے ٹھہرے، تو یہ بھی اس کی تفسیر کی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر موومنٹ سے وہ باخبر ہے کہ جہاں پہ پرماننٹ کسی نے رہنا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے، جہاں پہ وہ ٹیمپرری آتا ہے اس کو بھی جانتا ہے. آپ دیکھیں ٹیمپرریلی کہیں جاتے ہیں نا، آپ اس کا 100 انتظام کرتے ہیں کہ جی آپ فلانی جگہ ہم جا رہے ہیں وہاں پہ کھانے کا ہمارا کیا بنے گا، ہم ویکیشن پہ جا رہے ہیں وہاں پہ کس جگہ پہ ہم ٹھہریں گے، کدھر کھائیں گے، کیا ملتا ہے وہاں پہ کھانے کا. اللہ تعالیٰ کو بتانے کی کسی انسان کو اپلیکیشن دینے کی ضرورت نہیں، اللہ میں 10 ڈیز کے لیے فلانی جگہ جا رہی ہوں، میرا ریس کب آپ وہاں پہ پہنچا دینا، یہ نہیں کہنے کی ضرورت. اللہ تعالیٰ خود باخبر ہے، وہ خود جانتا ہے کس کا یعنی ٹیمپرری کون سا ٹھکانا ہے اور مستقل کون سا ٹھکانا ہے. اور اسی طرح بعض نے کہا کہ مستقر جو ہے وہ جو باپ کی پشت ہے، یعنی اس میں سے جو نطفہ نکلتا ہے، پھر اس کے بعد مستودع جو ہے وہ ماں کا پیٹ ہے، اس میں جا کے ٹھکانا پکڑتا ہے نا، وہاں پہ انسان کا بچہ پروان پیدا ہوتا ہے، وہاں پہ اس کو وہاں اس کی پرورش ہوتی ہے، وہاں پہ یعنی اس کا وجود ہوتا ہے. تو وہ یہ بھی جانتا ہے کس بچے نے کس پیٹ سے جنم لینا ہے، کس باپ کی پشت سے کون سا نطفہ آئے گا، کس رحم مادر میں جائے گا، کس گھر میں یعنی کون جنم لے گا نا، وہ اس کو بھی جانتا ہے. ہم سوچتے ہیں ہمارے کہیں سے ویزا لینے سے ہم کہیں پہنچیں گے، اس کے پاس کلوں کی کتاب مبین، ہر ایک چیز اس کے پاس کھلی کتاب ہے، پہلے سے ہی موجود ہے، ریکارڈ موجود ہے، اس کو پتا ہے کس نے کدھر کس گھر میں پیدا ہونا ہے. اب بعض لوگ بڑی شکایت کرتے ہیں، ہائے میں یہاں پہ کیوں پیدا ہو گئی، کاش میں اس کے گھر فلانے کے پیدا ہوتی، کاش میں ایک یہ ہوتی اور میں کیوں یہاں ہو گئی. نہیں، اللہ نے وہ بھی لکھا ہوا کہ کون کس جگہ ہوگا، سبحان اللہ، کس کی قبر کہاں بنے گی، جو میں نے آپ کو مستودع کا ایک اور بتائی نا، کس کی قبر کس کی کہاں ہوگی. دیکھ لیں اب انسان کدھر گھومتا رہتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اس کو پتا بھی نہیں ہوتا، وہ اپنی موت کے لیے وہاں پہنچ جاتا، وہ اس کی قبر بن جاتی، مستودع موت کی جگہ. جیسے ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کی اجل آ جاتی نا، موت آ جاتی ہے کسی زمین میں، تو اس کو کوئی ضرورت وہاں پہنچا دیتی ہے، یعنی اب کسی زمین کے اندر کسی کی موت لکھی ہوئی ہے، مثلا یہاں سے افریقہ میں لکھی ہوئی ہے اس کی موت، تو وہاں پہ کوئی کام پڑ جائے گا اور وہ وہاں پہنچ جائے گا. اب آپ سوچتے ہیں ہائے نہ جاتا بےچارہ تو نہ مرتا، نہیں ایسے نہیں ہے، اس کی موت اللہ نے وہاں لکھ دی نا، تو اس لیے اللہ نے ضرورت پیدا کر دی، یہ نہیں کہ ضرورت کیوں آئی تھی تو تب موت آئی، نہیں، موت تھی وہاں پہ تو ضرورت اس کو وہاں دی گئی، کیونکہ اس نے مرنا وہاں تھا. اور پھر آگے فرمایا اور جب وہ اس جگہ کی منتہا کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی روح کو قبض فرما لیتا ہے، اور قیامت کے دن وہ زمین کہے گی اے رب یہ وہ ہے جس کو تو نے میرے پاس امانت رکھا تھا. یہ امانت ہے نا اس کے پاس، مستودع ایک ٹھہرنے کی جگہ تھی جہاں پہ وہ ٹھہرا رہا، ایک سپورٹ کرنے کی جگہ تھی، تو مرنے کی جگہ بھی اللہ کو پتا ہے، وہ بھی اس نے ایک ریکارڈ میں ایک بک میں اس کے پاس ریکارڈیڈ ہے، سیوڈ ہے، جیسے ہم سیو کر لیتے ہیں نا اپنی فائلوں کو، ای میل سیو کر لی، یہ چیز سیو کر لی، اللہ کے پاس بھی ایک بہت سمجھ لیں کہ ایک رجسٹر ہے، ایک ریکارڈ بک ہے، کمپیوٹر کہہ لیں، جو بھی ہمارے دماغ میں آ سکتا ہے، ہماری چھوٹی عقلوں کے اندر جو
ذہن میں آ سکتا ہے. تو ایک کتاب مبین ہے, لوح محفوظ جس کو کہتے ہیں, تو اس میں ہر چیز ریکارڈڈ ہے. جیسے ہم دنیا میں انسانوں کے گھروں کے ایڈریس اور یہ وغیرہ یا یہ چیزیں رکھتے ہیں, اللہ کے پاس وہاں پہ سارے ایڈریسز پڑے ہیں, کون کہاں کہاں رہے گا, کدھر کدھر جائے گا, کس کے گھر کا کیا پتا ہے, کیا ہے, ہمیں تو لکھنا پڑتا ہے, سیو کرنا پڑتا ہے. اللہ کے پاس اس کو سیو کرنے کی ضرورت نہیں, صرف ہمیں بتانے کے لیے, کیونکہ انسان سوچتا ہے اگر سیو نہیں ہوگا تو پتہ ہی نہیں چلنا. نہیں, یہ صرف ہمیں بتانے کے لیے, ورنہ اس کو سیونگ کی ضرورت نہیں کہ سیو کرے. ہر چیز کی روزی, اس کی عمر, اس کی موت کی جگہ, یہ ساری ڈیٹیلز اس جگہ پہ موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم میں یہ روایت ہے, کہ تمام مخلوقات کی تقدیریں آسمان اور زمین کی پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے لکھ دی گئی تھی, 50,000 ایئرس پہلے. اور بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث ہے فرمایا, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنی پیدائش سے پہلے نا مختلف ادوار سے گزرتا ہے, جب دنیا میں نہیں آیا ہوتا تو ڈفرینٹ سٹیجز سے گزرتا ہے. جب اس کے یہ آرگنز کمپلیٹ ہو جاتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے جو اس کے بارے میں 4 چیزیں لکھ دیتا ہے, اس کا عمل کہ وہ کیا کرے گا, اس کی عمر سال مہینہ دن منٹ سانس تک لکھ دیے جاتے ہیں, نمبر 3 اس کو کہاں پہ مرنا ہے, نمبر 4 کہاں پہ مرنا اور کہاں دفن ہونا ہے, اور نمبر 4 اس کو رزق کتنا اور کس کس طریقے سے ملنا, یہ سب لکھ دیا جاتا ہے. اندازہ کریں کیا کیا اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. ویسے یہ ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کتنی ہے کہ انسان ان باتوں کو واقعی یقین کے لیول پہ لے لے نا, کہ اگر اللہ ایک چڑیا کو دے سکتا ہے, وہ کہاں رہتی ہے یہ جانتا ہے, وہ کدھر رات گزارتی ہے یہ جانتا ہے, وہ فلاں مچھلی ہے وہ کدھر تیر کے کدھر پہنچی ہوئی ہے وہاں پہ اس کو رزق دیتا ہے. آپ سوچتے چلے جائیں, سوچتے چلے جائیں, ہر ایک جانور کا سوچیں, کبھی غور و فکر کریں, ہر ایک نسل کا سوچیں, ہر ایک انڈیویجول کا سوچیں, سب کا وہ جانتا ہے, سب کی رہنے کی جگہ اس کو پتا ہے. یعنی کوئی بل میں رہ رہا ہے, کوئی غار میں رہ رہا ہے, کوئی سمندر کے اندھیروں میں رہ رہا ہے, کوئی درختوں کے اندر رہ رہا ہے, کوئی انسان کے جسم کے اندر جرمز ہیں وہ رہ رہے ہیں, کوئی ہوا کے اندر ہے, کوئی انسان کے پیٹ کے اندر کے کیڑے ہیں وہ کیڑے اندر پیٹ کے رہتے ہیں, کوئی جانوروں کی بھول کے اوپر رہتے ہیں, ان کی اسکن پہ رہتے ہیں, کوئی گروپس میں رہتے ہیں, کوئی اکیلے رہتے ہیں, سب کو وہ جانتا ہے. اللہ اکبر. اور سب کو رزق دے رہا ہے, وہ انسان کی عقل دم رہ جاتی ہے. اور اللہ کے وسیع علم کو جب وہ سوچتا ہے نا, تو انسان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قدر باخبر ہے, اس قدر علیم ہے. یہ سوچتے جائیں انسان کا ایمان بڑھتا ہے, اس سے اللہ تعالیٰ کے پر بھروسہ یقین بڑھتا ہے, اس پہ توکل بڑھتا ہے. پھر اللہ پہ میں کیوں نہ توکل کروں, جو جراثیم کو, چونٹیوں کو, مچھلیوں کو کہیں سے دے رہا ہے, مجھے نہ دے گا. اللہ اکبر. وہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام, اور وہ رب ہے جس نے پیدا کیا. اس رب کا تعارف ہے نا کہ وہ تم, یعنی پچھلی آیت کا اس سے کیا ریلیشن شپ تھا جو ہم نے پہلے پڑھا, ایک دم دابا کی بات کیوں آ گئی رزق کی؟ اس لیے کہ تم تو جان بھی نہیں سکتے کسی دابا کو, اللہ اس کو رزق بھی دے رہا ہے, وہ اس کے مستقر اور مستودع کو بھی جانتا ہے. تم اپنے کپڑے ایسے کر کے سوچتے ہو کہ تم چھپا لو گے جو تمہارے سینوں میں, وہ چھپتا نہیں اللہ سے, انسانوں سے چھپا لو گے, اللہ سے نہیں چھپتا, اللہ کا تو علم ایسا ہے. وہی بات, اب کیا ریلیونس تھی پچھلی بات سے. اور وہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام, اور وہ رب ہے جس نے 6 دنوں میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کر دیا. آسمانوں کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جو آپ بلو اسکائی باہر دیکھ رہے ہیں یہ آسمان ہو گیا اور زمین ہی ہو. آسمان میں سب چیزیں آ جاتی ہیں, جتنے یہ گیلیکسیز, جتنے ستارے, سیارے, سب اس میں آ جاتے ہیں. اور زمین میں جتنے پہاڑ, دریا, درخت, یہ جتنا سامان زندگی کا, غذائیں, یہ ساری اس کے اندر جو بھرنے کا کام تھا وہ ساری اس میں آ جاتی ہے زمین میں. ٹھیک ہے, تو یہ سب اس نے 6 دن میں کیا. اب یہ 6 دن کون سے 6 دن ہیں, ہمارے 6 دن کے کون سے 6 دن, اس کی ہمیں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. بار کیا ابھی تو سورج ہی نہیں بنا تھا, واللہ عالم کون سے 6 دن. لیکن ایک حدیث میں صحیح مسلم اور مسند احمد میں یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا اللہ عز و جل نے زمین کو ہفتے کے دن پیدا کیا، اتوار کے دن اس میں پہاڑ پیدا کیے، اور پیر کے دن درختوں کو پیدا کیا، اور ناپسندیدہ چیزیں منگل کے دن پیدا کی. اسی لیے بعض لوگ شاید منحوس اور اس کا جو سوچتے ہیں کہ نہیں کوئی کام ہوگا اس لیے وہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ کتنی شرک کی بات ہے اس طرح کسی دن کو بھی منحوس کہنا. اور بدھ کے دن نور کو پیدا کیا، جمعرات کے دن اس میں حیوانات پھیلا، اور جمعے کے دن عصر کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. ٹھیک ہے، تو یہ اس سے پتا چلتا ہے کہ چھ دنوں کی کیسے تفصیل تھی، اور چھ دن بھی یہ جو تھے وہ کس طرح سے اس کے اندر سارا اللہ تعالیٰ نے چھ سمجھ لیں سٹیجز کہہ سکتے ہیں، چھ ادوار کہہ سکتے ہیں. باہر کیا وکانا عرشہ علی الماء، اور تھا اس کا عرش پانی پر، اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا. اب اس بات کو ہمیں کریدنے کی ضرورت نہیں، کیسے تھا پانی پہ، کس طرح تھا، کدھر تھا وہ پانی، کیا تھا، بس یہ آیات یعنی ایسے متشابہات میں سے ہیں، اس کو ہمیں ایسے ہی جیسے لکھا ہے ویسے ہی بس سمجھ لینا چاہیے. ہماری عقل نہیں اتنی اس قابل کہ ہم اس کو اور سمجھیں یا ہماری سمجھ میں آ سکے. لیکن یہ اگلی بات ہے نا، یہ ہمارے لیے کہ کیوں اللہ نے یہ بنایا سارا نظام. کبھی آپ کے ذہن میں آتا ہے کیوں بنایا آسمان زمین یہ سارا کائنات کا نظام، اتنا کیا ضرورت ہے؟ یہ ہے اس کا جواب، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ آزما لے تم کو، تم میں سے کون ہے احسن عمل کرنے والا. سبحان اللہ، آج کتنے لوگوں کو یہ بات پتا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ سارا بنایا، اتنا بڑا کارخانہ ہے قدرت کیوں چل رہا ہے؟ آپ کو پتا تھا یہ تمہارے لیے بنایا ہے؟ کیونکہ دیکھیں جب ایگزام لینا ہوتا ہے تو ایگزامینیشن ہال ہوتا ہے نا، اس میں کرسیاں میز بھی رکھے ہوتے ہیں، پنکھا بھی لگا ہوتا ہے، پینسل اور کاغذ بھی ہوتا ہے، کتنی ساری چیزیں آپ کو دی جاتی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ پورا کارخانہ قدرت بنایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے. اللہ کے لیے یہ تو ہمارے لیے بڑی بڑی چیزیں ہیں نا، گیلیکسیز، آسمان، زمین، یہ وہ چیزیں ہمارے لیے بڑی ہیں، اللہ کے لیے تھوڑی بڑی ہیں اتنی. وہ تو اس کے لیے تو بس ٹھیک ہے، یہ کیا ایک ریت کے ذرے کے برابر بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب بنایا، سارے جیسے ایک وساط بچھا دی جاتی ہے نا، زمین آسمان اور اس میں ساری چیزیں اس لیے پیدا کی کہ تمہیں آزمایا جائے. کون ہے جو اس کے بعد مجھے پہچانتا ہے اور میری عبادت کرتا ہے اور مجھے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور نیکیاں کرتا ہے، احسن عمل، احسن بہت زیادہ اچھا عمل. یعنی یہ ہم سب کی ٹیسٹنگ کے لیے یہ سب بنایا گیا ہے تاکہ جو اچھے عمل والے ان کو چوز کر لے. یہ ہے پرپز آف کریشن، یہ ہے تخلیق کا مقصد، سلیکشن. یہاں پہ سلیکشن ہو رہی ہے، کون ہے جو اللہ جو اس بنانے والے اس نظام کو کھڑا کرنے والے کو پہچان لیتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کے، کون ہے جو اس کے آگے سبمٹ کرتا ہے، کون ہے جو اپنی میں چھوڑ کے اپنے آپ کو بڑا نہیں کرتا، اس کو کہتا کہ وہ بڑا ہے. یہ معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب بنایا. اور سوچیں ہم یہی بات بھول جاتے ہیں، یہی ایک چیز ہے جو بھول جاتے ہیں. ہم ساری چیزیں ہمیں یاد ہیں کہ سروائیول کیسے ہوگا، ہمارے بچوں کے لیے کیا ہم چھوڑ کے جائیں، اس کے لیے کیا کر کے جائیں، اس کا کیا انتظام کر کے جائیں، اور ایک بات بھولی رہتی ہے کہ میں دنیا میں آئی کیوں، آزمائش کے لیے؟ اللہ مجھے آزما رہا ہے، اس نے مجھے طاقت دے دی، قوت دے دی، قدرت دے دی، اختیار دے دیا، رائٹ اور رونگ کو چوز کرنے کا اختیار دے دیا تاکہ میں بیسٹ کر کے دکھاؤں. کون ہے جو ہم میں سے بیسٹ کرتا ہے آؤٹ آف ہاؤس؟ کون ہے جو ونر ہوتا ہے؟ کون ہے جو اس کی جنت کے قابل ہے؟ جیسے سلیکشن ہوتی ہے نا کسی جاب کے لیے، تو وہ آپ کے انٹرویو بھی کرتے ہیں، آپ کے ٹیسٹ بھی کرتے ہیں، اتنا بھی کرتے ہیں، بڑی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. تو وہ جنت کوئی معمولی چیز ہے؟ ایک جاب کے لیے تو آپ کو کتنے انٹرویو دینے پڑتے ہیں. تو اس جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزوں کا نظام رکھا. یہاں پہ تمہاری ٹیسٹنگ ہوگی، اب تم پروف کرو کہ تم اس کے قابل بھی ہو یا نہیں. آر یو ایلیجیبل ٹو انٹر جنت؟ جو ایلیجیبل ہوگا، جو اپنے آپ کو پروف کرے گا، وہی اس میں جائے گا. اور اللہ کو احسن عمل چاہیے، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ کثیر عمل چاہیے، بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ. میں 200 نفل پڑھوں گی، یا اللہ میں منت مانتی ہوں کہ میں اتنے ہزار نفل پڑھوں گی، میں اتنی جگہ دوں گی، میں فلاں. اس کو کثیر نہیں کہا گیا کہ بہت زیادہ، نہیں کہا گیا احسن. حسن کے اوپر توجہ دے، حسن عمل کا حسن ہے کہ نہیں، احسان کے لیول پہ ہے یا نہیں، ब्यूटीफुल है या नहीं, ब्यूटीफुल करके दे। आप मुझे 10,000 चीजें दे दें बिल्कुल निकम्मी गली सड़ी, आप कहेंगे देखे मैं आपको 100 चीजें दी है गिफ्ट में, तो सारी निकम्मी है तो मैंने उनको क्या करना। ठीक है ना, आप मैं कहती हूँ फिर मैं उनको देख के कहूँ कि एक दे देती मुझे ढंग की चीज तो देती, अच्छी तो देती। अब वो एक 100 के मुकाबले में कैसे बेहतर है, क्योंकि वो एक अच्छी है आसान है। ऐसा ही है ना, हम अल्लाह ताला को ऐसी नमाजें दें थूंगे मारने वाली, ऐसे रोजे दें जो फटे हुए हैं, ऐसे हजारों डॉलर सदका करें जिसमें रियाकारी है, वो अल्लाह को नहीं चाहिए। 2 डॉलर भी दिए होते लेकिन उसके अंदर इखलास होता तो वो उसको ज्यादा पसंद है। हम अक्सर कोशिश में रहते हैं हम बड़ा काम करें, बड़ा जी वो कोई छोटा काम बता देगा तो नहीं ये नहीं हमने करना, क्यों नहीं करना, दिल में ये होता है कि तो मेरे शान के खिलाफ है, मैं ये काम करूं छोटा सा, ये काम मेरे लिए रह गया। छोटे छोटे काम करने के हम इंटरेस्टेड होते ही नहीं है क्योंकि ये मामूली काम है। अब कोई बड़ा जब तक काम नहीं आएगा जिसमें सब अप्रिशिएट भी करें, जिसमें सब दिखें भी, जिसमें सबकी शाबाश भी हो, जिसमें सबकी तारीफें भी हो, तो वो काम में हर एक इंटरेस्टेड होता है। हालांकि अल्लाह को ऐसे काम नहीं चाहिए, उसको वो काम चाहिए जो सिर्फ उसकी रजा के लिए किया हो, जिसमें खलूस नियत हो। आसान अमल की डेफिनेशन आप लिखे, आसान अमल इज इक्वल टू लिखे खलूस और शरीयत मुहम्मदी की ताबेदारी, ये 2 चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। खलूस क्या है, यानी नियत खालिस अल्लाह के लिए हो जिसमें अल्लाह की रजा हो, और नंबर 2 शरीयत के मुताबिक हो, शरीयत ने उसको अलाउ किया हो, सुन्नत के मुताबिक हो। अब मैं कहूं नहीं देखे, कोई कहे कि अगर मिसाल के तौर पे मैंने किसी लड़के से फ्रेंडशिप की भी है लेकिन मेरी नीयत बहुत अच्छी है, मेरी नीयत में कोई खराबी नहीं, तो नीयत तो बड़ी अच्छी है लेकिन क्या वो उसकी शरीयत के मुताबिक है, क्या शरीयत में ये चीज अलाउड है, नहीं है तो वो कोई आसान अमल नहीं है, वो अच्छा अमल नहीं है, वो एक बुराई है। तो बाद लोग सिर्फ नीयत के ऊपर कहते नहीं नीयत तो हमारी अच्छी है ना, अब वो चाहे अमल इतना बुरा हो, देखिए नीयत हमारी अच्छी है, हम कितना अच्छा मिलाद कर रहे हैं, यहाँ पे खड़े होके हम दरूद सलाम पढ़ रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं हमारी मजलिस में, हमारी नीयत कितनी अच्छी है, आपको नहीं पता कितनी अच्छी हमारी नीयत है, लेकिन क्या शरीयत इसकी इजाजत देती है, क्या सुन्नत के मुताबिक है, क्या ऐसा अमल सुन्नत से साबित होता है, तो तब वो आसान अमल बनेगा, अदरवाइज नहीं। इसी तरह शरीयत के मुताबिक जितना भी हो, मसलन नफल नमाज है, नफली रोजे हैं, लेकिन अगर उसमें खलूस नहीं है, नियत में खराबी आ गई, तो वो भी आसान अमल नहीं। तो आसान अमल में ये दोनों शर्तें हैं, जब तक ये दोनों शर्तें पूरी नहीं होंगी उस वक्त तक वो अमल पसंदीदा है ही नहीं। ठीक है, तो अब वो चाहे छोटा है तो तब भी वो बहुत अच्छा है अल्लाह के नजदीक, चाहे इतना छोटा है कि खजूर दी भी है तब भी वो क्यामत के दिन उहद पहाड़ के बराबर हो जाएगी। लेकिन अगर उहद पहाड़ के बराबर भी अमल किया हुआ है लेकिन इन 2 में से एक शर्त उसमें नहीं है तो वो ऐसे ही हो जाएगा जैसे डस्ट है, आप डस्ट के ऊपर फूंक मारे डस्ट उड़ के चली जाती, हबाब मंसूरा बन जाएगा। तो अल्लाह ताला ने देखिए सुभान अल्लाह इंसान के लिए एक वैसे इसके अंदर कितनी ऑनर की भी बात है ना, ये सारा कुछ मेरी टेस्टिंग के लिए बनाया गया, इतना कुछ अल्लाह ने इंतजाम किया मेरे लिए, कभी सोचा आपने कि हम कितने हकीर से हैं इस यूनिवर्स के मुकाबले में, पर हमारी खातिर अल्लाह ने ये सारा कुछ निजाम बनाया, कितनी तकरीम दिया अल्लाह ताला ने बनी आदम को। वला इन कुलता इन्नकुम मबऊसूना, और अल्बत्ता अगर तुम कहते हो कि बेशक तुम उठाए जाने वाले हो, मिन बादल मौत मौत के बाद, यानी ए नबी अगर आप इनसे कहते हैं ना कि तुम मौत के बाद उठाए जाने वाले हो, लयकूलन्नल्लज़ीन कफरू, तो कहते हैं वो लोग जरूर कहेंगे वो लोग जिन्होंने कुफर किया, इन हाज़ा इल्ला सिहरु मुबीन, ये तो खुला जादू है, यानी ये लोग आपकी बात समझेंगे नहीं, इसको जादू कहकर टाल देना चाहते हैं, जो क्यामत का आखरत का इनकार करते हैं इसलिए कि उनको मौत के बाद जिंदगी के ऊपर कोई यकीन नहीं है, ये तो आगे से यही कहेंगे ये तो जादू है, ये तो ब्रेन वॉश कर रहे हैं आदमी को, ज्यादा ही आखिरत का जिक्र करने लगे ना, कहते हैं ये ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं, इनकी बातों में ना आना, तो बस ऐसे ही इनको कोई और काम नहीं है, यही बातें करते रहते हैं। क्यों नहीं मानना चाहते इस बात को कि मरने के बाद उठना है और जवाब देना है और ये टेस्टिंग हो रही है, इसलिए कि अगर मान लिया ना तो जिंदगी बदलनी पड़ेगी। टेस्टिंग फेज तो बहुत डिफरेंट होता है, हम तो मनमानी जिंदगी गुजारना चाहते। वला इन अखरना अनहुम अलअज़ाब, और अगर टाल दे हम उनसे अजाब को, इला उम्मत मादूदा, एक वक्त मुकर्रर था, एक गिनी चुनी मुद्दत तक, एक काउंटेड पीरियड तक, लयकूलुन्ना मा यहबिसुहु, अलबत्ता जरूर कहेंगे किस चीज ने रोक रखा है इसको, क्या बंदिश लग गई इसने। पहले ही हमने सूरत में पढ़ा था ना, सूरह यूनुस में भी, कि ये कहते हैं कब आएगा अजाब, कब आएगा, कब आएगा। तो भाई इतना अजाब मांग रहे हो, अगर अल्लाह ताला डिले कर देना अजाब, तो इन्होंने कहना क्यों रोका हुआ अजाब, आ क्यों नहीं जाता। तो यानी तुम इस, वो क्यों कहते थे कि क्यों नहीं आता, क्यों रोका हुआ, इसलिए नहीं कि उनको अजाब का शौक था, बल्कि इससे तुमको यकीन ही नहीं था। अला यौमी यातीहिम लैसा मसरूफन अन्हुम, अल्लाह ताला ने बता दिया, सुन लो फिर एक बात, खबरदार हो जाए, जिस दिन आ गया ना वो अजाब, नहीं फेरा जाने वाला उनसे, फिर तुम्हारी शामत ऐसी होगी कि फिर उसको कोई फेरने वाला नहीं होगा। लेकिन जितनी कौमों पे अजाब आए, आपने देखा ना उनकी, हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, जब कुरान के बारे में बताता है, तो वो चीखे मारते थे, वो कहते थे हम जालिम हैं, हमने गलत किया है, हम ही जालिम हैं, हमने सही नहीं किया। लेकिन क्या अजाब टल जाता था? किसी पे अजाब नहीं टला। आपने पढ़ा पिछली सूरत में कि सिवाय कौम यूनुस के, और वो भी क्यों तला था वो भी आपने पढ़ा, उसके अलावा किसी पे नहीं अजाब टला। जब अल्लाह की पकड़ आ जाती है ना, फिर वापस नहीं होती। तो तुम ये मांगते हो तो वो जिस दिन आ गया तो फिर तुम्हारी बचत नहीं होनी। दुनिया में अल्लाह का कायदा कानून क्या है, तो फौरी नहीं पकड़ता, मोहलत देता रहता है, मोहलत देता रहता है, लेकिन उसकी मोहलत अनलिमिटेड नहीं है, जब खत्म होती है। इंसान असल में ये जब मोहलत मिली होती ना, समझ लेता कि अब मुझे शायद पकड़ना ही नहीं है, मैं तो अब मुझे खुली छुट्टी हो गई, अगर आज तक पकड़ आनी होती अब तक आना जाती, लेकिन वो खुली छुट्टी नहीं होती, एक दिन आती है। वहा कभी हिम्मा कानू भी अस्ताजी, घेर लेगा उनको जो थे वो इसका मजाक उड़ाती, यानी जो भी मजाक वो करते थे, वो मजाक जिस चीज का उड़ा रहे थे वो कौन सी चीज थी, अजाब का। वो कहते थे ना क्यों नहीं आता, किसने इसको रोका हुआ है, क्यों ये डिले हो रहा है, इतनी ऐसी बातें करते थे, हमें कोई डर ही नहीं है, मजाक करते थे। तो माया यही जिसका मजाक कर रहे हो वो आ जाएगा, फिर तुम्हें घेर लेगा। यहाँ तक सिलावत सुनते हैं, फिर आगे चलते हैं इंशाल्लाह।
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.